ఇదమాద్యం పదస్థానం సిద్ధిసోపానపర్వణం యంసామోక్షమాణానాం అజిహ్మా రాజపద్ధతి. ఇదం వ్యాకరణశాస్త్రం సిద్ధిసోపానపర్వణం ఆద్యం పదస్థానం విద్యతే. సిద్ధి, సిద్ధి కహతే హై మోక్ష కో, సోపాన మనే సీఢీ, ఆర్ పర్వ కహతే హై సీఢీ మే జహాం కదమ రఖా జాతా హై, పావ్ రఖా జాతా హై, ఉస్కో హమ్ పర్వ కహతే హై. తో మోక్ష ప్రాప్తి కీ జో సీఢీ హై, ఉన్ సీఢీ, ఉస్ సీఢీ మే అనేకో పర్వ హై, మనే అనేకో పాయదాన హై, జిస్ పర్ మనే ఇస్ పర్ పావ్ రఖా, ఫిర్ ఉస్కే ఊపర్ వాలే పర్ పావ్ రఖా, ఫిర్ ఉస్కే ఊపర్ వాలే పర్ పావ్ రఖా. తో జైసే ఏక్ సీఢీ మే అనేకో పావ్ కో రఖనే కీ జగహ హోతీ హై నా, ఉసీ జో వహీ జో పావ్ రఖనే కీ జగహ హై, ఉసీ కో సిద్ధి సోపాన పర్వ కహతే హై. తో మోక్ష, మోక్ష కీ జో సీఢీ కా పర్వ హై, ఉన్ పర్వో మే ఇదం ఆద్యం పదస్థానం, జితనే భీ పదస్థాన హై, జితనే భీ పర్వ హై, పదస్థాన మనే పద రఖనే కా స్థాన, పావ్ రఖనే కా స్థాన. తో సిద్ధి కే సోపాన మే జితనే భీ పదస్థాన హై, ఉన్ సారే పదస్థానో మే ఇదం వ్యాకరణం ఆద్యం పదస్థానం, యహ జో వ్యాకరణ హై యే ఆద్య పద కా స్థాన హై, పహలీ సీడీ హై, ఇస్కే బాద్ హీ జో హై నా వ్యక్తి దూసరే పదస్థాన పర్ అప్నా పావ్ రఖ పాతా హై, పహలీ సీడీ పర్వ కో క్రాస్ కర్కే. తో ఇదం ఆద్యం పదస్థానం సిద్ధి సోపాన పర్వణం, సిద్ధి కే సోపానో కే జితనే భీ పర్వ హై, ఉన్ సారే పర్వో మే పహలా జో పర్వ హై, పహలా జో పదస్థాన హై, వహ వ్యాకరణ రూపీ హీ పదస్థాన ఉస్మే హోతా హై. యం సా మోక్షమానానాం అజిహ్మా రాజ పద్ధతి, యహ జో వ్యాకరణ విద్యా హై, యహ రాజ పద్ధతి హై. రాజ పద్ధతి మే జైసే ఆప్నే సునా నేషనల్ హైవే సునా హై నా, తో యే జో హైవే హోతా హై నా, ఉస్కో కహా జాతా హై రాజమార్గ, ఆర్ రాజమార్గ కో హీ రాజ పద్ధతి కహతే హై. తో రాజ పద్ధతి మనే రాజమార్గ, ఆర్ వహ కైసా రాజమార్గ, తో అజిహ్మా, జిహ్మ మతలబ్ హోతా హై కుటిల్, ఆర్ అజిహ్మ మతలబ్ హోతా హై అకుటిల్, అకుటిల్ మనే సీధా సీధా జో రాస్తా హోతా హై నా, ఉస్కో అజిహ్మ కహతే హై, మనే అకుటిల్ మార్గ కహతే హై. తో యహ తో వ్యాకరణ రూపీ జో మార్గ హై, జిస్ మార్గ సే హోకర్ కే మోక్ష తక్ హమ్ పహుంచతే హై, యహ జో వ్యాకరణ రూపీ మార్గ హై యే కైసా హై, తో అజిహ్మా రాజ పద్ధతి హై, మనే అకుటిల్ రాజమార్గ హై. ఆర్ రాజమార్గ మే క్యా హోతా హై కి ఆసానీ సే వ్యక్తి జో హై నా అప్ని యాత్రా కర్ పాతా హై. తో యం సా మోక్షమానానాం, మోక్షమానానాం అర్థాత్ మోక్షం ఇహ మానానాం, మోక్ష కీ చాహత్ రఖనే వాలో కే లియే, మోక్ష కే జో ఇచ్ఛుక్ లోగ్ హై, ముముక్షు జో హై ఉన్కే లియే యహ వ్యాకరణ విద్యా సరళ రాజమార్గ హై. ఇస్ రాజమార్గ సే ఆరామ్ సే ఆసానీ సే జో హై వ్యక్తి యాత్రా కర్కే ఆర్ మోక్ష తక్ కీ ప్రాప్తి వహ కర్ సక్తా హై. ఇస్కే బాద్ 17వీ కారికా మే అత్రాతీత విపర్యాసః కేవలామనుపశ్యతి ఛందస్య ఛందసాం యోనిం ఆత్మా ఛందో మయిం తనుం. ఇస్మే అత్ర జో హై, ఇస్ అత్ర కా అర్థ హై అత్ర అస్మిన్ వ్యాకరణ శాస్త్రే, మనే ఇస్ వ్యాకరణ శాస్త్ర మే అతీత విపర్యాసః, ఇస్ వ్యాకరణ శాస్త్ర కే పఢనే సే క్యా హోతా హై, తో వ్యక్తి జో హై నా వో అతీత విపర్యాస హో జాతా హై, వ్యక్తి క్యా హో జాతా హై అతీత విపర్యాస. యే అతీత విపర్యాస క్యా హై, తో విపర్యాస మతలబ్ హోతా హై భ్రమ, ఆర్ అతీత మతలబ్ నష్ట హోనా, తో జిస్కా భ్రమ కా నాస హోనా. తో వ్యాకరణ శాస్త్ర కే పఢనే సే వ్యక్తి అతీత విపర్యాస హో జాతా హై, మనే వ్యక్తియో కా భ్రమ జో హై వహ మిట జాతా హై, ఆర్ వ్యక్తియో కే భ్రమ కే మిట జానే సే క్యా హోతా హై, తో ఛందస్య ఆత్మా, వ్యక్తి కీ జో ఆత్మా హై వహ ఛందస్య హో జాతీ హై, ఛందస్య మతలబ్ శుద్ధ హో జాతీ హై. తో వ్యాకరణ శాస్త్ర కే పఢ లేనే సే వ్యక్తి అతీత విపర్యాస హోతా హై, వ్యక్తి కా భ్రమ మిట జాతా హై, और व्यक्ति के भ्रम के मिट जाने से उसकी आत्मा छंदस्य हो जाती है, उसकी आत्मा जो है वह शुद्ध हो जाती है। और आत्मा के शुद्ध हो जाने से क्या होता है, जो छंदसाम छंदोमयम तनुम, छंदस छंदसाम अर्थात शब्द ब्रह्मणाम, शब्द ब्रह्म का जो छंदोमयी तनु है, माने छंदोमय शब्दमय जो शरीर है, वह शब्दमय शरीर उसके कई रूप होते हैं ना, पर मैंने बताया था पिछले पाठ में कि परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। तो ये अतीत विपर्यास होने के बाद जब आत्मा छंदस्य हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, उसके बाद शब्द ब्रह्म का जो शब्दमय शरीर है, बांगमय शरीर है, उस बांगमय शरीर को पश्यति, वह व्याकरण पढ़ने वाला जो है वह देखने लग जाता है। तो परा परावाक जो है उस परावाक का साक्षात्कार हो जाता है। इसमें ये परावाक का ये केवलाम जो है ना, इसका अर्थ परावाचम कर लेंगे कि परावाणी को अनुपस्थिति माने देखता है। तो परावाणी को देखने के लिए इन्होंने क्या कहा कि व्याकरण शास्त्र को पहले पढ़ना है, जिससे कि विपर्यास जो है अतीत होगा, भ्रम जो है वह मिट जाएगा और उससे आत्मा शुद्ध होगी। और आत्मा शुद्ध हो जाने से फिर जो है शब्द ब्रह्म का जो शब्दमय शरीर है, छंदोमय शरीर है, बांगमय शरीर है, परावाणी जो है, उस परावाणी का जो है वह प्रत्यक्ष हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। फिर 18वीं कारिका है, प्रत्यस्तमित रूपाया यद वाचो रूपमुत्तमम यदग्निना इव तमसी ज्योतिः शुद्धं प्रवर्तते। प्रत्यस्तमित रूपायाः यद वाचः रूप उत्तमम, यत रूपम वाचः उत्तमम, वाणी का जो स्वरूप उत्तम स्वरूप है, वाणी का जो उत्तम स्वरूप है, वाणी का उत्तम स्वरूप क्या होता है, तो इसको आप परावाणी भी कह सकते हैं और स्फोट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्फोट कर लीजिए, तो वाणी का जो उत्तम स्वरूप है, स्फोट रूपी स्वरूप, उस स्वरूप का, उस स्वरूप के बारे में शुरू में पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है, जैसे कि पर्दे के उस पार कोई वस्तु रखी हुई है तो वो वस्तु आपको नहीं दिखेगी, उस वस्तु का पता नहीं चलेगा, लेकिन उस पर्दे को अगर हम हटा देवे तो क्या होगा, उस वस्तु का साक्षात्कार होगा ना, उस वस्तु का प्रत्यक्ष हो जाएगा ना। ऐसे ही ये जो वाणी का उत्तम रूप है, स्फोटात्मक रूप, वह रूप जो है वह पहले आच्छादित रहता है अज्ञान के द्वारा, वह स्फोट का जो स्वरूप है वह आच्छादित रहता है, लेकिन व्याकरण पढ़ लेने से क्या होता है कि वह जो आच्छादन है, वह जो पर्दा है, वह पर्दा उसका मिट जाता है, पर्दा हट जाता है। वही इन्होंने कहा कि प्रत्यस्तमित रूपायाः वाचः, वाणी का जो स्वरूप है वह प्रत्यस्तमित रहती है, आच्छादित रहती है, और वह जो आच्छादन है वह व्याकरण विद्या के सहयोग से, व्याकरण विद्या के महत्व से या व्याकरण विद्या के ज्ञान से, वह आच्छादन, वह जो प्रत्यस्तमित है, वो प्रत्यस्तमित मतलब आच्छादित, प्रत्यस्तमित रूपाया मतलब आच्छादित रूप वाली वाणी, जो आच्छादित रूप वाली जो वाणी है उसका जो उत्तम रूप है, स्फोट वाला रूप, उस रूप का दिग्दर्शन जो है व्याकरण रूपी प्रकाश से होता है। इसी बात को आगे कहते हैं, यत अग्निना इव तमसी, जैसे तमसी माने अंधकारे, अंधकार में अग्निना इव अग्नि की तरह जो है, जैसे अंधकार में अग्नि के द्वारा कोई वस्तु प्रकाशित होती है, उसी तरह से प्रत्यस्तमित रूप वाली जो वाणी का उत्तम स्वरूप है, आच्छादित स्वरूप वाली वाणी का जो उत्तम स्वरूप है, स्फोट शब्द का स्वरूप, उस स्फोट का दिग्दर्शन जो है जैसे अंधकार में अग्नि करा देती है, उसी तरह से व्याकरण रूपी जो ज्योति है, या भी ज्योति कैसी तो शुद्धम ज्योति ही, शुद्ध ज्योति जो है व्याकरण रूपी शुद्ध ज्योति, इस शुद्ध ज्योति से उस वाणी के उत्तम स्वरूप का साक्षात्कार होता है, वाणी के उत्तम स्वरूप का दिग्दर्शन होता है। अब इसके आगे 19वीं कारिका में वैकृतम समतिक्रांता मूर्ति व्यापार दर्शनम व्यतीत्यालोकतमसी प्रकाशम यमुपासते। आपने अभी इससे पहले पढ़ा कि जैसे अंधकार में अग्नि जो है वस्तु को प्रकाशित करती है, उसी तरह से अज्ञान से आच्छादित जो स्फोट है, उस स्फोट को ये व्याकरण रूपी जो ज्योति है वह प्रकाशित कर देती है, ये पढ़ा था आपने। अब आप यहाँ एक जान लीजिए कि कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कि अंधकार अति प्रकाश में दिखाई देते हैं, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो प्रकाश में दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो अंधकार में दिखाई देते हैं। आपको थोड़ा सुन करके आश्चर्य लगा होगा, घबराने की बात नहीं है। ऐसा है कि घट पटादि जो वस्तु है वह तो प्रकाश में दिखता है, अंधकार में नहीं दिखता, लेकिन मणि में रहने वाला जो प्रकाश है, मणि में रहने वाला जो चाकचिक्य है, वह अंधकार में ही वह प्रकाश मणि का प्रकाश दिखाई देता है। सूरज के उजाले में मणि का जो है ना, मणि की चमक जो है वह दिखती नहीं है। इसको तो अंधकार में रहेगा, आपने सुना होगा कि नाग सर्प जो होता है, नाग मणि का नाम सुना होगा, तो नाग का जो मणि है वह अगर उजाले में रहे ना तो उसमें से उसकी लाइट जो है ना नहीं दिखती है, उजाले में उसका प्रकाश नहीं दिखता, लेकिन वही नागमणि अगर अंधेरे में रहे तो अंधकार में जो है ना उसका प्रकाश दिखता है, दूर से ही दिखता है। तो कुछ चीज़ों को देखने के लिए अंधकार की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो है ना, यहाँ स्फोट और व्याकरण के संदर्भ में अगर देखें तो स्फोट ऐसा तत्व है जिसको ना हम अंधकार में देख सकते हैं और ना प्रकाश में देख सकते हैं। इसको स्फोट को देखने के लिए अंधकार और प्रकाश से कुछ विलक्षण तत्व चाहिए, माने इससे भी ज़्यादा हट करके कोई पावरफुल चीज़ चाहिए जिसके द्वारा कि हम स्फोट का साक्षात्कार कर सकें। यही चीज़ यहाँ बताई गई है। आपने दूसरी पंक्ति में देखिए, व्यतीत्य आलोक तमसी, आलोक कहते हैं प्रकाश को और तमस कहते हैं अंधकार को, कि आलोक और तमस इन दोनों को व्यतीत्य माने इन दोनों का को अतिक्रमण करके, इन दोनों को उल्लंघन करके, माने इन दोनों से विलक्षण, इन दोनों से हट करके, यह जो व्याकरण रूपी प्रकाश है ये इन दोनों से हट करके है। किन दोनों से? जो मणि को प्रकाशित करने वाला जो अंधकार है और घटपटादि को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है, इन दोनों से हट करके भी, इन दोनों से विलक्षण जो है ये स्पेशल एक प्रकाश है, व्याकरण रूपी प्रकाश, जिससे कि ये स्फोट का जो है दिग्दर्शन हो पाता है, स्फोट का साक्षात्कार हो पाता है। इसमें पहली पंक्ति में मूर्ति व्यापार दर्शनम कहा गया है, ये माने स्फोट की मूर्ति का भी दर्शन होता है और स्फोट के व्यापार का भी दर्शन होता है। स्फोट की मूर्ति, मूर्ति माने स्वरूप, तो स्फोट के स्वरूप का ज्ञान होता है, और व्यापार का अर्थ लेना है यहाँ पर अर्थवाचकत्व, अर्थ को बताने वाला जो है उसको हम अर्थवाचक कहते हैं, और अर्थवाचक में रहने वाला जो धर्म है उसे अर्थवाचकत्व कहते हैं। तो व्याकरण रूपी प्रकाश से स्फोट का जो मूर्ति की जो मूर्ति है उसका भी दर्शन होता है, और स्फोट में रहने वाला जो अर्थवाचकत्व व्यापार है उसका भी दर्शन होता है। फिर एक पंक्ति है, वैकृतम समतिक्रांता, ये जो स्फोट है ना ये क्या है, वैकृत को अतिक्रमण करके रहता है यह स्फोट। ये वैकृत क्या है? तो देखिए, नाद आपने सुना होगा, ध्वनि सुना होगा, तो नाद और ध्वनि एक ही चीज है। तो दो प्रकार की ध्वनि है, वैकृत ध्वनि और प्राकृत ध्वनि। तो प्राकृत ध्वनि जो है वह स्फोट का व्यंजक होती है, स्फोट का बोधक होती है, और वैकृत ध्वनि जो है ना वह स्फोट का व्यंजक नहीं होती, वो स्फोट को जो है ना दूर दूर तक फैलाती है। अब जैसे आप माइक लगा लेते हैं ना, तो माइक में जब बोलते हैं तो आप कम जोर से भी बोलेंगे लेकिन माइक आपकी आवाज़ को दूर तक पहुंचा देगा ना, वही काम वैकृत ध्वनि करती है। लेकिन अति स्फोट जो है वह तो अति अप्रत्यक्ष होता है, उसको प्रत्यक्ष करने वाली जो ध्वनि है उसको हम प्राकृत ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा कि वह जो स्फोट है वह क्या है, तो वैकृतम समति क्रांता, वैकृत नाद जो है, वैकृत ध्वनि जो है उससे वह परे है, उससे वो अलग है। वो जबकि दुनिया जो है वैकृत ध्वनि को ही समझती है कि यही शब्द है, यही अर्थवाचक है, यही स्फोट है, जबकि ऐसा नहीं है। स्फोट अलग होता है और ध्वनि अलग होती है। ध्वनि जो है व्यंजक होती है और स्फोट जो होता है वह व्यंग्य होता है। तो इस टाइप का जो वैकृत ध्वनि से अलग जो स्फोट है, उस स्फोट के मूर्ति का दर्शन और व्यापार का दर्शन इस विलक्षण व्याकरण रूपी प्रकाश से होता है। यह जो व्याकरण रूपी प्रकाश है वह अंधकार और प्रकाश जो सामान्य है, जनरल है, उससे अलग है, उससे यह स्पेशल है। इस तरह से हमने 19वीं कारिका को भी पढ़ा। अब 20, 21, 22 तीन और कारिकाएं हैं जिसमें कि व्याकरण के महत्व को प्रतिपादित किया जाएगा। फिर उसके बाद अलग प्रसंग जो है शुरू होगा। जैसे आपने वहाँ महाभाष्य में पहले आपने व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन पढ़ा, व्याकरण के महत्व को पढ़ा, फिर उसके बाद जो है ना शुरू होता है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, जिसमें कि बताया जाता है कि शब्द नित्य है। इसी तरह से यहाँ भी क्रम है कि यहाँ 22वीं कारिका तक आपको व्याकरण का महत्व बताया जाएगा और फिर 23वीं कारिका से शब्द के नित्यत्व होने की बात की जाएगी, फिर नए नए प्रसंग सब आएंगे। तो आज का के पाठ का यहीं पर मैं विराम देता हूँ।